Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Aranyor Nihito Jata Veda Garbha Iva Subhrito Garbhini Bhihi दिवे दिव इड्यो जागत जागृवद्भिर् हविषद्भिर् मनुषेभिर् अग्निः तद्विज्ञानार्थं गुरुमेव अभिगच्छेत् समितपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्रुति ने कहा कि परमात्मा को जानना है तो गुरु की शरण में जाए, क्योंकि गुरु की शरण में जाए बिना ज्ञान का होना संभव नहीं है। हमारे अनुभूति का विषय ये सारे बाहर के पदार्थ हैं, हमारी अनुभूति बाहर की है। इंद्रियों के द्वारा बाहर के पदार्थों को हम बहुत अच्छी प्रकार से जान लेते हैं, लेकिन अतिंद्रिय आत्म तत्व का बोध इन बाह्य इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं है। हम कौन हैं इसका परिचय केवल शब्द प्रमाण के द्वारा ही संभव है। इसलिए आत्मा के लिए कहा गया है कि ये ज्ञाप्य है, ज्ञान का विषय है, ये क्रिया का विषय नहीं है। हमारे सामने बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम प्राप्त करते हैं क्रिया के द्वारा, श्रम करते हैं, क्रिया करते हैं, और जो वस्तु दूर देश में है, अन्य रूप में है, उस वस्तु को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। चाहे हम भौतिक पदार्थ प्राप्त कर लें तो भी हमें क्रिया करनी पड़ती है। जैसे यहां प्रेमपुरी सत्संग में आना होता है तभी आप आते हैं, आने की क्रिया और समय सापेक्ष यहां आना है। यहां आने के लिए आपको तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक आपके शरीर का होना भी जरूरी है, यदि शरीर ना हो तो भी आप यहां नहीं आ सकते हैं। शरीर अस्वस्थ हो तो भी हम यहां नहीं आ सकते हैं। शरीर स्वस्थ है लेकिन आप चलेंगे नहीं, गमनागमन की जो क्रिया है उसको आप करेंगे नहीं तो भी आप यहां नहीं आ सकते हैं। और तीसरी चीज है समय भी चाहिए, बिना समय आप यहां आ ही नहीं सकते। यहां आना, यहां पहुंचना शरीर सापेक्ष है, क्रिया सापेक्ष है और समय सापेक्ष है। इसी प्रकार दुनिया की किसी भी वस्तु को आपको प्राप्त करना है तो वहां तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। मानो आपको लोक लोकांतर जाना है, वैकुंठ जाना है, स्वर्ग जाना है, या मान लो कि नरक में भी जाना है, तो भी आपको इन तीन चीजों की जरूरत है, शरीर की जरूरत है। मान लो ये शरीर नहीं तो वहां सूक्ष्म शरीर तो होगा, कोई ना कोई क्रिया का आधार चाहिए। शरीर के बिना क्रिया बनती नहीं है, ये शरीर हमारे क्रिया का आधार है। और वहां भी समय चाहिए और वहां भी चलने की क्रिया चलना चाहिए। तो दुनिया का एक नियम है, कोई भी चीज कोई भी देश पाना है तब वो शरीर सापेक्ष, क्रिया सापेक्ष और समय सापेक्ष है। लेकिन ये चीजें दूर के संदर्भ में हैं, बहुत दूर चीजें हैं, उसके लिए आपको समय की जरूरत है, क्योंकि दूरी को पाटने के लिए क्रिया की जरूरत है। हमें दूरी कम करनी पड़ती है, या तो वो वस्तु आपके पास पहुंच जाए या तो आप उनके पास पहुंच जाए। ये दो के बीच की जो दूरी है वो दूरी मिटाए बिना उसका पाना ही संभव नहीं है, और उस दूरी को पाटने के लिए क्रिया की जरूरत है, क्रिया के लिए शरीर की जरूरत है। लेकिन मान लीजिए कि कोई वस्तु आपके ही पास है, आपके ही पास है और आप भूल गए हैं, और आपको ऐसा लगा कि वस्तु खो गई। अब आप कितना भी परिश्रम करें, कितना भी खोजे, तो आपको कहीं मिलेगी कि नहीं? हो आप कितना भी परिश्रम करें वो वस्तु आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वस्तु खोई नहीं है, खोने का केवल भ्रम है। महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं, कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते उसने अपने चश्मे को माथे पर रख दिया और अचानक उसको लगा कि चश्मा कहाँ है, ढूंढने लगा, पूरा घर छान मारा, लेकिन चश्मा उसको नहीं मिला। और संभावना तो यही है कि उसको चश्मा मिलने वाला भी नहीं है। बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा। पोते ने पूछा, दादाजी क्या ढूंढ रहे हैं? दादाजी ने बोला कि मैं चश्मा ढूंढ रहा हूं, पता नहीं कहां खो गया है। बच्चे ने हंसते हुए कहा कि दादाजी आपकी माथे पर है चश्मा। और ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का दैनिक अनुभव है, कभी पेन खो जाते हैं, कभी चश्मा खो जाता है, वही होता है, ज्यादा दूर नहीं होता है, आपके आसपास रखा होता है। लेकिन आपको भ्रम हो गया होता है कि वो खो गया है। महात्मा लोग एक बड़ा सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। एक कोई व्यक्ति था, उसको बड़ी भूलने की आदत थी, और जो भी वस्तु जहां रखता वो भूल जाता था, बाद में ढूंढता वो। उसको किसी ने बोला कि भैया तुमको भूलने की आदत है, तो एक काम करो, तुम रात्रि के समय जब सोते हो तो उस समय सारी चीजें नोट करके रखा करो कि अमुक चीज अमुक जगह पर, अमुक चीज अमुक जगह पर, अमुक चीज अमुक जगह पर, और सुबह उठते ही वो लिस्ट दोहराया करो, सारी चीजें आपको मिल जाएगी वहां। उस आदमी ने एक लिस्ट बनाई, प्रतिदिन देख लेता, सुबह उठते लिस्ट ढूंढ लेता, वो कहां है, वो कहां है, वो बड़ी चीज आरायस मिल जाती। एक दिन उसने सारी चीज लिखते समय ये भी लिख दिया कि मैं कॉट पर, सारी चीजें जहां थी वहां लिखा, और अंत में ये भी लिख दिया कि मैं कॉट पर। अब वो जहां जहां चीजें रखी थी वहां चीजें उनको मिली, जाके देखा चश्मा जहां था वहां मिला, पानी की बोतल जहां थी वहीं मिली, सब कुछ मिला, लेकिन वो बिस्तर से नीचे उतर चुका था। लेकिन जैसे उसने अंतिम अपना नाम देखा कि मैं कॉट पर, तो कॉट पर तो दिखाई नहीं, वो परेशान हो गया कि मैं कॉट पर, वो भूलने की आदत थी ना उसकी, परेशान हो गया। घर के किसी सदस्य ने पूछा कि क्या हुआ आपको, परेशान क्यों है? उन्होंने कहा कि सारी चीजें तो मिली लेकिन ये अंत वाली चीज नहीं मिल रही है। बोले मैं कॉट पर तो हूं, कहां कॉट पर, दिखाई तो नहीं दे रहा है। बहुत समझाने के बाद भी नहीं माना, उस आदमी ने धीरे से उसको पकड़ करके बिस्तर पर बिठा दिया और बोला अब लिस्ट पढ़ो तुम। और जैसे उसने लिस्ट पढ़ी तो उसको मालूम पड़ा कि मैं कॉट पर। अब उसको केवल नहीं होने का भ्रम हो गया, वो स्वयं है। उन्होंने आरोपित कर लिया था कि मैं कॉट पर, और उसने आरोपित कर लिया कि वो नहीं है। वस्तु तो वही था वो, अब उसको प्राप्त करने के लिए कहां जाना है। माथे पर चश्मा रखा है, अब उसको यदि आपको पाना है तो क्या क्रिया करनी पड़ेगी। ये दृष्टांत बड़ा मजेदार दृष्टांत है। माथे पर चश्मा है लेकिन भ्रम हो गया है, चश्मा खो गया है, अब उसको प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है आपको कोई बताने वाला हो। बस आपको कोई बताने वाला हो कि आपके माथे पर चश्मा है, बस इतनी बात है। आप पूजा पाठ करो, बैठ करके जप करो, ध्यान करो, तीर्थाटन भी कर लो, लेकिन वो चश्मा मिलेगा? वो क्यों मिलेगा? वो क्योंकि आपका जो चश्मा है ना, वो बाहर नहीं है, वो आपके पास है। और जब आपको मिलेगा तो शब्द से मिलेगा, किसी के कहने से मिलेगा। और उसको जब आप बोलेंगे कि मेरे को मिल गया, तो वहां कोई क्रिया है क्या? कोई क्रिया नहीं है, वहां समय है। भैया चश्मा मिला आपको, कहीं जाके थोड़ी मिला है, कोई क्रिया थोड़ी करनी पड़ी, क्रिया सापेक्ष नहीं है वो। और इसीलिए वो समय सापेक्ष भी नहीं है, जहां है वहीं है वो। उसको केवल पहचानना है। ऐसे आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए कहीं जाना नहीं है, उसको केवल जानना है वो। आत्मा क्रिया का विषय नहीं, आत्मा जानने का विषय है। आत्मा क्रिया का विषय तब होता जो जब वो आपसे अलग होता, भिन्न होता, दूर देश में होता, दूसरे किसी रूप में होता, तो उसको प्राप्त करने के लिए अवश्य आपको क्रिया करनी पड़ती और वहां समय की भी अपेक्षा होती। यहां केवल गुरु और गुरु के जो उपदेश हैं उसका अनुसंधान। तो यहां बहुत सुंदर एक बात कही है, अरण्योर निहितो जात वेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः। जब आप यज्ञ में कभी देखे होंगे, अरण्य मंथन करते हैं, तो वहां दो लकड़ियां होती हैं, एक ऊपर की लकड़ी और दूसरी नीचे की लकड़ी। ऊपर की लकड़ी को बोलते हैं उत्तरारणी और नीचे की लकड़ी को बोलते हैं दक्षिणारणी। और दोनों के बीच में एक लकड़ी होती है और उसके बाद फिर उसका मंथन करते हैं, उसको रगड़ते हैं। जैसे आप लोग दही मथते हैं ना, वैसे उसको मथते हैं। और जब दही मथते हैं, वैसे जब मथते हैं तो उसमें अग्नि पैदा हो जाती है, उसी अग्नि का नाम है जात वेदा। तो वो अरणि मंथन के द्वारा अग्नि पैदा हो जाती है। उस लकड़ी में पहले से अग्नि है, वहां अग्नि केवल प्रकट की जाती है, वहां अग्नि पैदा नहीं की जाती है। जो वस्तु पहले से न हो उस वस्तु को पैदा किया जाता है, और जो वस्तु पहले से ही है, छिपी हुई है, उसको केवल प्रकट किया जाता है। लेकिन प्रकट करने के लिए जरूरी है, वहां पर उसका मंथन करना, श्रम बहुत जरूरी है। और आश्चर्य की बात, यदि आपने मंथन करने के बाद उस अग्नि को उठाया नहीं, तो वो अग्नि क्या करती है? उसी लकड़ी को जला देती है। ये उस अग्नि का स्वभाव है, रगड़ने के बाद उसी लकड़ी में अग्नि पैदा होती है, और वो अग्नि उसी लकड़ी को जला देती है, खा जाती है। ऐसे यहां पर भी दो लकड़ियां हैं, एक है गुरु और दूसरे हैं शिष्य। जो गुरु हैं वो ऊपर वाली लकड़ी हैं, उत्तरारणी है, और जो शिष्य हैं वो दक्षिणारणी है। और आपका जो सत्संग है ना, ये वो बीच वाली मथानी है। आप अनेकों प्रकार के उपदेश श्रवण कर रहे हैं, मंत्र आप श्रवण कर रहे हैं, अनेकों विचारों का श्रवण कर रहे हैं, साधना का श्रवण कर रहे हैं, ये मथानी है। आप तीनों चीजों होने के बाद ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट होगी कि नहीं? होगी जरूर, लेकिन आपको करना पड़ेगा मंथन। क्रिया वे तो करनी पड़ेगी, लकड़ियां रखी हुई है, रस्सी भी रखी है, तो क्या अपने आप अग्नि पैदा होगी क्या? सत्संग के द्वारा हम साधन श्रवण करते हैं, लेकिन उस साधन का फिर मंथन करना पड़ता है, अनुसंधान करना पड़ता है। इसलिए श्रुति ने कहा आत्मावारे श्रोतव्यो मंतव्यो निरिध्याशित मंतव्यो, ये मंतव्य माने मंथन है, ये अनुसंधान है। हम जब तक अनुसंधान नहीं करेंगे, जब तक मंथन नहीं करेंगे, तब तक अग्नि पैदा नहीं होगी। इसलिए आत्मज्ञान जिसको आप बोलते हैं वो श्रम साधन है, ध्यान देना, आत्मा श्रम नहीं है। आपको सारी चीजें जो करनी है ना, वो सब ज्ञान के लिए करना है, जानने के लिए करना है। जैसे आप आंख खोलेंगे तो आपको ज्ञान तो होगा, ज्ञान के लिए परिश्रम नहीं, आंख खोलने के लिए परिश्रम है। आप जैसे यहां आकर के बैठ गए, आपकी कान खुली हैं, शब्द का श्रवण आप करते जा रहे हैं, अर्थ का बोध आपको होता जा रहा है, ये श्रम नहीं है। लेकिन यहां तक आने का तो श्रम है। आपको गुरु ने ज्ञान दिया, ध्यान दिया, साधन दिया, और उसके बाद फिर आपने उसका मनन किया, और मनन के बाद आपको ज्ञान हुआ, तो ज्ञान होने में श्रम नहीं है, ज्ञान श्रम नहीं है। लेकिन सारी श्रम जो है ना, वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अग्नि को प्रकट करना है। ऐसे ज्ञान को प्रकट करने के लिए जो अच्छे विचार हैं, तत्वमसी आदि महावाक्य हैं, सत्संग है, जप है, ध्यान है, ये सारी चीजें उसके प्रति असाधारण है। परम पूज्य महाराज श्री कहते कि आपको केवल सिर पर हाथ रखे कोई तो आपको ज्ञान नहीं होने वाला है। कोई आपके सिर पर हाथ रखे तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ी राहत मिल सकती है, आत्मविश्वास बढ़ सकता है, लेकिन श्रम तो हमें ही करनी पड़ रहा है। आपने 11वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के पढ़ा है, 7वें अध्याय में और 10वें अध्याय में विभूतियों का प्रतिपादन किया भगवान ने। अर्जुन ने पूछा दृष्टुम इच्छामि ते रूपम, मैं आपका वो रूप जो कणकण में है, जिसका आपने प्रतिपादन किया, उसको मैं देखना चाहता हूं। श्रोतुम न इच्छामि दृष्टुम इच्छामि, मैं सुनना नहीं चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। क्योंकि सुनने में परोक्ष ज्ञान होता है और देखना अपरोक्ष ज्ञान है। जैसे आपने सुना मीठा, तो आपका मुख थोड़े मीठा हुआ, आपको स्वाद नहीं मिला और न उसका पोषण भी मिला, लेकिन स्वाद और पोषण के लिए आपको खाना पड़ेगा। ऐसे आत्मा परमात्मा के बारे में अर्जुन ने सुना, और सुनने के बाद उनके मन में इच्छा हो गई कि मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं कि आप बोल रहे हैं नदियों में मैं गंगा जी हूं, मनुष्यों में मैं राजा हूं, पशुओं में मैं शेर हूं, वेद में ओंकार हूं, बहुत सारी विभूतियां भगवान ने बता दी। और भगवान को यह नहीं कहना था कि मैं गंगा हूं और अन्य नदियां मैं नहीं हूं, भगवान को तो यही कहना था कि दुनिया की सारी नदियां मैं हूं, पर्वतों में मैं केवल हिमालय हूं, यह नहीं कहना था भगवान को, मनुष्यों में केवल राजा हूं मैं, ये नहीं कहना था भगवान को, तो यही कहना था मनुष्य मात्र मैं हूं, भगवान को यही कहना था जीव मात्र मैं हूं, जड़ चेतन सब, इसलिए सातवें अध्याय में भगवान ने घोषणा भी कर दी थी, मया ततमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना, ये सारी जो दुनिया है मेरे से व्याप्त है, सियाराम मैं सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है, कण कण में परमात्मा है, बाहर भीतर ऊपर नीचे आकाश की तरह। लेकिन भगवान को मालूम था इतनी ऊंची बात यदि आपको बता दे तो आपको समझ में नहीं आएगी, तो भगवान को धीरे धीरे आपको समझाना है। पहले आपको हिमालय तो मालूम पड़े भगवान है, आपको पहले मालूम पड़े मनुष्यों में राजा जो है भगवान का रूप है, पशुओं में शेर भगवान का रूप है, मालूम तो पड़े। पहले धीरे धीरे क्रमिक रूप से चलना। लेकिन अर्जुन ने आग्रह किया कि मैं देखना चाहता हूं कि आप कण कण में हैं या आपकी सारी विभूतियां हैं, मैं देखना चाहता हूं। तो भगवान ने उनको दिखा दिया और दिखाने के बाद भगवान ने इशारा किया कि भाई कोई चीज आप देख लेते हैं ना तो आपके चेहरे पर भाव भंगिमाएं भी अलग हो जाती हैं। कोई चीज मैं दिखा दूं और आपके चेहरे पर कोई परिवर्तन ना हो तो यही समझना चाहिए कि वो चीज दिख नहीं रही है। भगवान समझ गए कि मैं दिखा तो रहा हूं लेकिन अर्जुन को दिखाई नहीं दे रहा है। बोले दिखाई नहीं दे रहा है, बोले नहीं दिखाई दे रहा है। और ये बात भगवान को भी मालूम थी, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सबके हृदय की बात जानते हैं, मन की बात जानते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है वो भगवान जान लेते हैं। भगवान को मालूम था कि अर्जुन को दिखाई देने वाला नहीं है और उसके बाद भी भगवान ने दिखा दिया और दिखाने के बाद पूछा भी कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप क्या दिखा रहे हैं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा चलो, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्चिमे योगमेश्वर, मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, दिव्य दृष्टि के द्वारा तुम देख लो। और भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, वहां दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, आंख नहीं, वहां दृष्टि शब्द का अर्थ केवल आंख नहीं है, वहां दृष्टि शब्द का प्रयोग है। और वो जो दृष्टि है ना वो आंख की भी दृष्टि, कान की भी दृष्टि, नाक की भी दृष्टि, रसनेन्द्रिय की भी दृष्टि, त्वचेन्द्रिय की भी दृष्टि। और जैसे उनको दृष्टि मिली ना तो फिर वो अर्जुन देखने लगा कि विश्व रूप क्या है। अब वो केवल देख नहीं रहा था, सुन भी रहा था। आज यदि केवल देखता है देखता तो उतना जैसा वर्णन आता है ना वैसा नहीं होता। आपने कभी पहले पुराने जमाने में कहते कि बिना शब्द वाली पिक्चरें बनती थी, बिना, और आज आप बिना शब्द वाली पिक्चर देखो तो आपको आनंद ही नहीं आएगा, आपको तो चित्र ही चित्र दिखाई देंगे। यदि साउंड बंद हो जाए और केवल आपको पिक्चर दिखाई दे तो आप बोर हो जाओगे। लेकिन आजकल एक 3D पिक्चर या निकली, हमने तो नहीं देखा लेकिन लोग बोलते हैं कि वो ऐसा अनुभव होता है कि जैसे सामने से गोली मारता है किसी को तो अपने को लगता है कि अपने को ही गोली लग गई। जब वहां पर बारिश होने लगती है तो अपने को ऐसा एहसास होता है कि हम भी बारिश में भींग रहे हैं, भींगते नहीं लेकिन मालूम होने लगता है। आज अर्जुन की भी वैसी स्थिति थी, वो 3D की तरह। अब वहां वो अर्जुन देख रहा था, वहां जो वर्णन है आपके 11वें अध्याय में हो तो बहुत ऊपर ऊपर का वर्णन है, कोई चीज शब्द में आती है कितना कहेगा। मां यशोदा को भी भगवान ने दिखा दिया था, विश्वरूप दिखा दिया, वहां देख रहे थे अर्जुन, देख रहे थे मां यशोदा, देख रही थी अनंत समुद्र उमड़ रहे हैं, उमड़ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के मुख में उमड़ रहे थे। आज वो उमड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, शब्द सुनाई भी तो दे रहा था, उसकी गड़गड़ाहट मां को सुनाई दे रही थी। वहां केवल देखना नहीं था, वहां तो सुनना भी था। और अर्जुन देख रहे थे अनंत सूर्य, देख एक सूर्य नहीं, ये एक सूर्य ही अपने को इतना तपाता है और अनंत अनंत सूर्य जहां दिखाई दे वो कैसे तपते होंगे। और उसके तपन का अनुभव भी अर्जुन कर रहा था। पांचों ये भूत अंदर दिखाई दे रहे थे, हवा, तूफान, ये सारी चीजें। इसलिए आप अर्जुन के अंतिम वर्णन को सुनना, रोंगटे खड़े हो गए, भयभीत हो गया, वो भूल गया कि मैं कौन हूं। अर्जुन यही भूल गया कि मैं कौन हूं, और ये भी भूल गया कि आप कौन हैं। भैया वहां तो और कोई था ही नहीं ना, युद्ध के मैदान में दोनों बीच में खड़े हैं और दोनों मित्रों का संवाद हो रहा है और भगवान उनको विश्वरूप दिखा रहे हैं और उन्हें पूछा कि भाई आप कौन। वहां तो ऐसा अकाल नारायण काल का रूप देख रहा था अर्जुन, महाकाल। वहां पर जन्म, स्थिति और प्रलय, ये तीनों देख रहा था अर्जुन। और ये भी देख रहा था। हम लोग सुनते हैं ना, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते, हम लोग जन्माद्देश्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र केवल सुनते हैं,